على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امام علی علیہ السلام کے کلمات القصار کے حوالے سے بات چیت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو جس کلمات القصار یعنی وہ چھوٹے جملے جس کے اندر امام نے سمندر کو یا سمندروں کو قطرے کی طرح قطرے کے اندر قید کر دیا یعنی کمپریسڈ اگر آپ کمپریسڈ انگلش کا لفظ استعمال کیا تو اس میں وہ زپ فائل ہوتی ہے نا آپ نے ابھی دیکھا آپ کو استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایک زپ فائل کے اندر لیکن جو یہ کلمات ہیں اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ تمام کے تمام جو آپ نالج موضوع کے حوالے سے جو کلمات القصار میں کہا ہے اس کی گہرائیوں تک انسان تا قیامت تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تو یہ کہ ہماری ایک کوشش ہے اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام علی کے دل ہم سے خوش ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے احکامات اور انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں انسان عمل کرے ایمان کے حوالے سے امام سے جب سوال کیا گیا تو امام نے کہا کہ ایمان چار دائم یا چار شعب کے اوپر استوار ہے اس کے اندر صبر تھا اور کیا تھا صبر تھا یقین تھا عدل تھا اور جہاد تھا صبر کے اندر جو ہے وہ پھر امام نے دوبارہ چار اس کے شعب یا دائم جو ہیں وہ بیان کیے اس کے اندر شوق تھا خوف تھا اور کیا تھا زہد تھا اور ترقب جی تو اس طرح سے سوچ لیں کہ امام جو ہے وہ پہلے تو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایمان جو ہے وہ چار چیزوں کے اندر یا ایک اور آپ کو شعب یا دائم یا پارٹس کہہ لیں پچھلی دفعہ آپ کو ایک مثال دی تھی ٹیبل کی کہ چار اس کی ٹانگیں ہیں اور چار ٹانگوں کے اوپر یہ ٹیبل جو ہے استوار ہے اس طرح سے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو صبر ہے عدل ہے یقین ہے اور جہاد ہے وہ چار ٹانگیں ہیں جس کے اوپر ایمان انسان کا استوار ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیں کہ ایمان کے چلیں اس طرح سے کہہ لیں کہ چار پارٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ایک پارٹ کیا ہے صبر ہے ایک پارٹ کیا ہے یقین ہے اور جہاد ہے اور عدل چار پارٹس ہو گئے کیا ہوا صبر یقین عدل اور جہاد تو ایمان کے چار پارٹس ہو گئے اب ان چار پارٹس کے اندر جو صبر ہے امام کہتے ہیں اس کے بھی چار پارٹ ہیں اس کے اندر سے ایک پارٹ جو ہے شوق ہے دوسرا پارٹ صبر کا کیا ہے خوف ہے تیسرا پارٹ صبر کا زہد ہے اور چوتھا پارٹ ترقب ہے ترقب یعنی کسی چیز کے انتظار میں رہنا یا کسی چیز کو نزدیک سمجھنا تو اس طرح سے امام نے صبر کے حوالے سے بھی اس کی تشریح کی ہے اس کے علاوہ یقین کی بھی کی ہے عدل کی بھی کی ہے اور جہاد کی بھی کی ہے تمہید تھوڑی سی باندھ کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ اون کرتے ہیں نہیں مثلاً یہ ابا ہے یہ میری ہے قبا میری ہے صحیح ٹوپی میری ہے اور اس کو میں اون کرتا ہوں یا گھر ہے یا گھر تو یہاں پہ بہت کم لوگ اون کرتے ہیں زیادہ تر وہ بینک کا ہوتا ہے آپ رینٹ کر رہے ہوتے ہیں بینک اونر ہوتا ہے اور آپ رینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس امید پہ कि खुदा आपको इतनी लंबी जिंदगी देगा कि वो एक दिन घर आपका हो जाएगा। तो गाड़ी है या मसलन चीज़ें हैं जो कि इंसान ओन करता है, लेकिन ये चीज़ें एक आरजी ओनरशिप है ना, क्योंकि आप जब तक इस दुनिया में हैं ये चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो सबको आपको इधर ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ओन करते हैं, जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे, आमाले साले या आमाले सु, या ये आप ओन करते हैं और इसके अंदर आप हकीकी ओनर हैं, एंड यू आर द रियल ओनर ऑफ योर ओन एक्शंस। ये जो आमाल हैं, अच्छे हों या बुरे हों, आप ओन करते हैं, और ये जो चीज़ें आप ओन करते हैं इसको आप आगे भी ले जाएंगे, ठीक है। तो दर हकीकत में जो चीज़ें आप ओन करते हैं वो आपके अपने आमाल हैं। इसी तरह से ईमान है, ईमान भी मैं ओन करता हूँ। अब जो मैं ईमान ओन करता हूँ वो ईमान हो सकता है कि आप ओन ना करते हो, जिस तरह से जो घर मैं ओन करता हूँ वो घर आप ओन नहीं करते, या जो गाड़ी मैं ओन करता हूँ वो गाड़ी आप ओन नहीं करते, और जो मेरा ईमान है उसी को मैं अपने साथ रोज़े माशर में भी और कब्र में भी, पुले सरात पे भी, जन्नत दोजख, ये चीज़ें जो मैं ओन करता हूँ ये मैं साथ लेकर जाऊँगा। तो दर हकीकत में आपको ये तसव्वुर लाना चाहिए कि अगर आप देखना चाहें कि आप अमीर हैं या फ़कीर हैं, तो अपनी मादी चीज़ों की तरफ निगाह ना करें। अब ये देखें कि आप किन आमाल को ओन करते हैं। अगर तो आप आमाल साले को ओन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सिफात हसना को ओन करते हैं यानी गुड क्वालिटीज़ को ओन करते हैं, गुड कैरेक्टर को ओन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अमीर हैं। अगर आप सिफात सू को, रजीला को, गंदी सिफात को, बुरी सिफात को, गंदे कैरेक्टर को ओन करते हैं, गंदे आमाल को ओन करते हैं, तो ओनर फिर भी आप हैं, सही। अब जो चीज़ इंसान वाकयान जब किसी चीज़ को ओन करने की वो कोशिश करता है तो उसकी ओनरशिप से पहले स्ट्रगल होती है, समझ रहे। जब उसने ओन कर ली तो वो तो उसकी है, उसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं है, साथ में मेरे, यानी जिस तरह घर है ना, अब आपने फ़र्ज कर लें कि 25 साल में, 30 साल में इतनी ज़िंदगी आपकी रही और आपने उसको एक दिन ओन कर लिया, जब ओन कर लिया उसके बाद मॉर्गेज तो पे नहीं करनी, वो आपका हो गया, सही। तो जिस तरह मसलन और भी चीज़ें हैं, आप कह लें कि आपने मसलन, हम जो हमारे भाई हैं छोटे, मसलन उनमें से कोई चाहता है कि वो आईपैड 2 जो अभी निकला नहीं है, आ जाएगा, वो चाहता है कि मसलन वो उसको ख़रीद ले। अब वो बाप उसको कहेगा, अभी देखो हमारे पास तो 700-800 मसलन नहीं है, तुम समर जॉब करो, पैसे कमाओ, गैस स्टेशन पे जाओ, ये करो वो करो, और अपने पैसे कमा लो तो तुम वो ओन कर लोगे, सही। अब वो समर में जॉब करे, जिस तरह से भी करे, वो पैसे इकट्ठे कर ले, उसने जब आईपैड 2 जो है वो ख़रीद लिया, उसके बाद उस चीज़ की अंदर उसे स्ट्रगल नहीं करनी, वो उसकी है। तो ओनरशिप से पहले स्ट्रगल होती है, ओनरशिप के बाद स्ट्रगल नहीं होती। तो ईमान के हवाले से भी ऐसे, जब तक ईमान को आपने ओन नहीं किया तब तक आप स्ट्रगल में हैं, और स्ट्रगल के बगैर आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि मैं किसी भी चीज़ को ओन कर लूँ, मादी चीज़ें जितनी भी आप तसव्वुर कर लें, बगैर कोशिश के, स्ट्रगल के, ऐसा नहीं होता। तो अब जो भी चीज़ एक्चुअली आप हासिल करना चाहते हैं या ओन करना चाहते हैं, ओनरशिप रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोशिश दरकार है। और अगर आप इन चीज़ों को देखें जो इमाम ने ईमान के हवाले से कहा है, तो सब्र भी जो है वो बगैर कोशिश के इंसान ओन नहीं कर सकता, बगैर कोशिश से ओन नहीं कर सकता। मसलन अल्लाह सुब्हान व तआला सब्र के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ों में उसको ख़रीदने की दावत देता है, साथ है ना मेरे। आप ओनरशिप किसे करते हैं, कुछ देते हैं और फिर वो लेते हैं। اب وہ کیا ہے, وہ آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے, مشکلات میں ڈالتا ہے, اور کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کو خرید سکتے ہیں یا نہیں. اب جب انسان مشکل میں آتا ہے اور اگر وہ صبر کو خرید لیتا ہے تو جتنا صبر وہ خرید لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے, ساتھ ہے میرے؟ اور جس طرح سے وہ مشکلات میں سے گزرتا رہتا ہے اور سٹرگل کرتا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے, وہ صبر یعنی اس کا بڑھتا رہتا ہے, وہ اسے اون کرتا رہتا ہے. اب ایک وقت ہے کہ صبر آپ ہو سکتا ہے, امام نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صبر کرتے ہوں جنت کے شوق میں, یہ ہے نا کہ شوق کے یعنی جو صبر تھا اس کے چار حصے ہیں, چار حصوں میں سے ایک تھا شوق. امام کہتے ہیں کہ جس شخص کو شوق ہوگا جنت کا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اپنی شہوات پہ غلبہ کرنا, یا وہ شہوات کو بھول جائے گا, صحیح؟ تو جس شخص کے اندر یہ شوق ہے جنت کا, اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شہوات کو خدا نے موقع دیا ہے بیچ کر, ساتھ ہیں؟ ان چھوٹی چھوٹی شہوات کو بیچ کر, یعنی کہ ان کے اوپر عمل نہ کر کر وہ جنت کی دائمی جو لذات ہیں وہ خرید رہا ہے, ساتھ ہیں؟ مثلاً ایک شخص ہے, چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ ماہ رمضان کے اندر ایسا ہوتا ہے, ایگزامپلس بہت ساری ہیں, آپ اس کے حوالے سے اگر سوچنے لگیں تو بہت, آپ یعنی 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے یا 11 گھنٹے یا 12 گھنٹے انسان بھوک یعنی پانی نہ پینا, کھانا نہ کھانا, اب اس کے علاوہ بھی ہیں جھوٹ نہ بولنا, غیبت نہ کرنا, یہ ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن ہم کھانا روٹی اسی کے اوپر, اس کو بیچ کر یعنی بھوک کو دے کر کیا تقویٰ خریدتا ہے, ساتھ ہے میرے؟ لعلکم تتقون, وہ تقویٰ کو خریدتا ہے. اب اس خریدنے کے اندر سٹرگل ہے, لیکن جب تقویٰ آ جائے گا تو اس کے اندر سٹرگل نہیں ہے, لیکن بغیر بھوک کے تقویٰ نہیں آتا, پیٹ بھر کے کھا کے یہاں تک مثلا انسان کھا کے اچھا مرغا اور سارا کچھ, صحیح, وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ تقویٰ کو خرید لے گا. تو اب جس شخص کو جنت کا شوق ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شہوات, اس دنیا کی شہوات, اپنی لولی ڈیزائرز, وہ کیا کرے گا, بیچ دے گا, کہے گا میں نہیں کرتا, نہیں کرتا, خرید کیا لے گا, جنت, کیونکہ اسے شوق ہے جنت کا. اب یہ جو جنت ہے اس کے بھی درجات ہیں. دیکھیں جنت کو ہم نے بہت ڈاؤن گریڈ کیا ہے, اسپیشلی جب بتاؤں کہ جی جنت, ہم تو جنت کے لیے کام نہیں کرتے, ہم تو صرف خدا کے لیے کرتے ہیں اور یہ, اور اس طرح سے ہم کافی باتیں کرتے ہیں نا, ہمیں تو کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں جنت کے بہت سارے درجات ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک رات کو بیچ کر, یعنی آپ حضرت ہور کا دیکھیں, اس شخص نے کچھ لمحات کو بیچ کر, ان لمحات میں جنت اور دوزخ کو دیکھ کر, ان لمحات کو بیچ کر, یعنی وہ یزید کے لشکر میں سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. ایک رات بیچی ہے نا, اگر اس رات کے اندر وہ ڈیسیجن یہ نہ لیتے, اب یہ جو جنت انہوں نے حاصل کی, یہ جنت کون سی جنت ہے؟ یہ جنت وہ جنت ہے جہاں امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب ہوں گے. ایسی آیا جنت کا شوق ہمیں پیدا نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسی جنت کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہے, پھر سر کٹوانا ہو, سر حاضر, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس جنت کا, جس جنت کا ہمیں شوق ہے اس کو خریدنے کے لیے پھر کوئی چیز بھی جو ہے ہمیں مشکل نہیں ہوگی دینی. कि हमें वो हासिल हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? सब्र चाहिए। तो इंशाल्लाह जन्नत का शौक रखें, लेकिन वो जन्नत, मसलन अगर पूरी जन्नत हमें मिल भी जाए लेकिन इमाम हुसैन का घर उधर ना हो तो उस जन्नत का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? आप हमेशा के लिए उस पे उधर रहेंगे भी, खाना पीना मिलता रहेगा, घर बार होगा, हूरुल आइन और ये सब कुछ, और अंगूर और सब, दूध की नहरें और दरख्त और ये सारा कुछ हो भी, लेकिन उस जन्नत में इमाम हुसैन का घर ना हो तो उस जन्नत का क्या फ़ायदा? जन्नत उन लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो ये जन्नत यहाँ पर है। बिलाखिर उस जन्नत को भी क्या आप तसव्वुर करते हैं, उससे आपकी शौक की शिद्दत बढ़ेगी, यानी आप आमादगी पैदा करेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को बेच दें कि आप वो चीज़ खरीद लें। इंशाल्लाह के खुदा हमें तौफीक देगा। सलावात पढ़े मोहम्मद। तो हमें देखना चाहिए कि हम किन चीज़ों को ऑन करते हैं। अगर हसद को इंसान ऑन कर सकता है, हसद को कर सकते हैं आप ऑन? कर सकते हैं। किसी के पास है हसद? हो सकता है, हो सकता है। मैं अपने तरह कहता हूँ, मेरे अंदर है मसला। अब मैंने इस हसद को ऑन किया है, इसको ऑन करने के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, ये ऐसे नहीं मिल जाता, हसद भी ऐसे नहीं मिल जाता, बड़ी स्ट्रगल की है, रातों को जाग के डिप्रेस हो के, स्ट्रेस हो के, दूसरों की तरफ निगाह कर कर के, खून जला के, ब्लड प्रेशर हाई करके, हैं जी, और अपनी नींदों को हराम करके, गुस्से में रह कर, ये सारा स्ट्रगल है। अब वो बंदा इस स्ट्रगल से गुजरता है, उसके बाद हसद जो है उसको खरीद लेता है, ऑन कर लेता है। अब उसके बाद हसद करने में उसे कोई स्ट्रगल नहीं होती। गीबत है, गीबत कोई ऑन करता है? सब करते हैं। अब ये गीबत भी हमने आराम से नहीं ली, पता नहीं कितनों को अपने अच्छे आमाल हसना दिए। मसलन अभी नमाज पढ़ी, कोशिश की, दिक्कत की कि दो रकत नमाज खुदा के लिए बंदा पढ़ ले ना, पढ़ के ख़त्म हुई, दो मिनट के अंदर उसको हदिया कर दिया किसी के नाम, बेच दिया ना। और करते 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 अब गीबत इतनी, क्योंकि स्ट्रगल होती है ओनरशिप से पहले। अब अगर किसी शख्स को स्ट्रगल यानी को वो उसे दिक्कत या मुसीबत या डिफिकल्टी पेश नहीं आ रही गीबत करने में, इसका मतलब है वो ऑन करते हैं। और अगर वो ऑन करते हैं तो ये बात जान लें कि वो इस चीज को अगर बेचेंगे नहीं तो ये साथ लेकर जाएंगे। हसद को अगर बेचेंगे नहीं यहां पे तो वो क्या है, साथ लेके जाएंगे। ओनरशिप है ना, चुगलखोरी है, गुनाह ने कबीरा के हवाले से बात की हुई आपके साथ, उनको भी इंसान ओन करता है, उसको भी आप बेच सकते हैं। भाई आपके पास जो चीज देगी, अगर मेरे पास ये है, ये मेरी है तो मैं इसको बेच सकता हूं। एक आप देखें, जब आप ओन करते हैं क्या कर सकते हैं, एक चीज होती है कि आप उसे बेच सकते हैं, दूसरी क्या होती है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसे होता ना, एक होती है बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, सही, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी अपनी चीज है, डिस्ट्रॉय कर दें, उसको हदिया कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं ना, ये सब चीज़ें ओनरशिप की जितनी यहाँ पे चीज़ें हैं उसको आप, मसलन हसद है आप उसको बेच दें, बेच के क्या लें? हसद को बेच के क्या लेंगे हैं?
जी 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 मैंने वैसे सच्ची बात की है जो मेरे दिल में
वो निकल आई जी,
तो उसमें जो सही बात है मैंने वही कही थी। तो ये तो शौक की बात
जी जी,
इसी का थोड़ा सा फर्क है।
बेशक हसद को मसलन आप देखें, आप हसद को शुक्र, हसद को देकर ट्रेनिंग कर लें और शुक्र को ले लें। उससे क्या है कि जैसे आप शुक्र को लेंगे और हसद जो है उसको दे देंगे, तो वो नेमतें जो आप किसी दूसरे के पास देखते थे और वो मसलन चाहते थे कि उससे भी गुम हो जाए, वो नेमतें खुदा आपको दे देगा। तो क्या हुआ, हमने एक चीज़ को जो कि हम ओन करते थे उसको ट्रेडिंग कर लिया किसी और चीज़ से, और उस चीज़ के आने से वो चीज़ जो हम चाह रहे थे वो भी हमें मिल गई। ठीक है, या मसलन एक शख्स है वो रियाकार है, मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक शख्स है वो रियाकार है, वो करता है काम खुदा के लिए, रियाकार खुदा के लिए काम कर सकता है? रा यानी दिखाना, रिया यानी किसी को दिखाकर, यानी रियाकार तब ये चीज जो है वो बुरी सिफत है जब आप लोगों को दिखाकर काम करें। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा को दिखाने के लिए काम करे, अच्छी बात है। मैं क्यों ये काम कर रहा हूं, क्योंकि खुदा देख रहा है। मैं ये अच्छा काम क्यों कर रहा हूं, खुदाया देख जो नेमत तूने मुझे दी, मैंने उस नेमत को तेरे रास्ते में खर्च किया। ये देखो जो आपने हमें बच्चे दिए, जो आपकी जो है वो हमारे पास अमानत है, मैंने उनको आपकी राह में खर्च कर दिया। ये देखें जो मुझे आपने टाइम दिया था उसको मैंने आपकी राह में खर्च कर दिया। आप देख रहे हो और मैं आपको दिखाने के लिए ये काम कर रहा हूं, सही। अब ये कोई, ये अच्छी चीज है, इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ एक वो शिफ्ट है। रियाकार जो है वो लोगों की वजह से करता है, लोगों को दिखाने के लिए वजह से करता है, इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लें थिंकिंग को। आप करें अच्छा काम करें और कहें खुदाया मैं ये कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब आपने जाहिर है जो चीज़ें ओन करते हैं उन्हीं से या तो आप सेल कर सकते हैं, ट्रेड इन कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं ना। और अगर वाकई इंसान तौबा करे और सही मानों में तौबा करे तो उसकी जो सयात होती हैं वह खुदा क्या कहता है, मैं उसे हसनात में बदल देता हूँ। और वो सयात हसनात में कैसे बदलती हैं, वो इसी तरह से बदलते हैं कि वो शख्स उन चीज़ों को क्या करते हैं, या तो ट्रेडिंग कर लेता है अच्छी सिफात से, या फिर क्या उनको बेच कर कुछ और अच्छी सिफात को ले लेता है। आपको एक और मिसाल दे दें फिर आगे चलते हैं। सबसे बेस्ट पुलिसमैन कौन बनता है, सबसे बेस्ट पुलिसमैन सबसे अच्छा चोर, यानी जो सबसे अच्छा चोर होता है अगर वो पुलिसमैन बन जाए तो वो सबसे अच्छा पुलिसमैन बनता है। किस तरह से, क्योंकि वो यानी चोर की तरह उसे सोचने का पता होता है, क्योंकि उसे सोचने का पता होता है तो वो सबसे अच्छा पुलिसमैन बन सकता है। अब ये क्या है, पहले वो सहीयात में था, उसने तौबा की, तौबा करके कहा कि नहीं वो जो मैं काम करता था वो खराब था, अब मैं पुलिसमैन बन के दिफा करूंगा। अब उसकी जो सयात थी वो क्या किसमें बदल गई, हसनात में बदल गई। सही, तो जो शख्स मसलन एक है, एक और एग्जांपल देते हैं, मसलन एक शख्स है जिसका मजनू, लैला और मजनू का आपने किस्सा सुना हुआ है, अगर रोमियो और जूलियट का किस्सा सुना हुआ है ना, अगर रोमियो जो है जो मजनून जो है अगर उसकी थोड़ी सी वो शिफ्ट कर लेता, थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, प्यार की इंटेंसिटी तो उसकी है, वो नहीं कोई कह रहा कि तुम मजनून बनो, नहीं मजनून तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, उसे करना क्या था कि लैला वो बना लेता खुदा को, वो चीज जो ऑलरेडी वो ओन करता था, प्यार उसकी इंटेंसिटी जो ऑलरेडी ओन करता था, होना क्या था कि अगर लैला की बजाय खुदा उसका उससे वो प्यार करता तो मजनू कहां से कहां पहुंच जाता। और कुछ लम्हों में वो कहां से कहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसी का जो प्यार था, जो उसकी शिद्दत थी, जो उसकी आग थी, अगर वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ उसकी डायरेक्शन को बदल देता तो चंद लम्हों में वो कहां से कहां पहुंच जाता। तो उसके साथ जब बात है वमन अशफाका मिनन्नार इज्तनबल मुहर्रमात, के जो शख्स जो है वो जहन्नुम की आग से डरता है, वो इज्तनाब करता है किन चीज़ों से, मुहर्रमात से, वो चीज़ें जो कि खुदा ने ममनू करार दी हैं। यानी ये डर जो है उसको ये सब्र देता है, इस्तकामत देता है, कि किस चीज़ का डर, जहन्नुम की आग का डर। जहन्नुम की आग का डर आपको है, नहीं है? जहन्नुम की आग का डर नहीं है, लेकिन यहां की आग का डर है। हाँ जी, जो यानी जहन्नुम की आग का डर, आप क्यों कहते हैं कि मैं डरता हूं जहन्नुम की आग से, क्योंकि आप यहां की इस दुनिया की आग से डरते हैं। जहन्नुम की आग तो आपने देखी नहीं, जहन्नुम की आग तो अभी तक देखी नहीं, और क्योंकि वो चीज जो कि अभी तक देखी नहीं है, कैसे इंसान कह सकता है कि मैं उससे डरता हूं, ये नहीं हो सकता। या तो ना कि वो कभी चीज देखी हो, अगर देखी हो तो फिर कह सकते हैं हाँ मैं उससे डरता हूं, जब देखी नहीं है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं उससे डरता हूं। हकीकत में वो ये कह रहा होता है कि अगर वो जहन्नुम की आग से डरता है तो वो अपना डर इसी दुनिया की आग का बता रहा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस दुनिया की आग मुझे जलाती है तो मैं नहीं जलना चाहता, लेकिन दर हकीकत में इस दुनिया की आग कोई आग नहीं है, क्योंकि उधर देखिए आग ये ना कि यहाँ पे सुई गैस के पता नहीं चूल्हे होते हैं नहीं होते, सुई गैस का पता ना, गैस स्टोव्स, गैस स्टोव के अंदर एक वक्त ये ना कि आग जल रही है, अब आपने हाथ अपना आग के ऊपर रखा, सही, जैसे ये ट्राई ना कीजिएगा, ऐसा ना हो कि अब ये ट्राई करने लगे, नहीं ट्राई नहीं करना, लेकिन मसलन मिसाल दे रहे हैं, अगर आपने आग के ऊपर अपना हाथ रखा, आपका हाथ जलेगा, कौन जला रहा है, वो आग जला रही है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके वजूद से आग निकल रही हो, यानी आप खुद वो सुई गैस हो, अगर आप खुद वो हो, ईंधन हो, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यानी जब हाथ आग पे आया तो सिर्फ आपका हाथ जला और उस दर्द ने ट्रांसमिट किया ब्रेन में और पूरे जिस्म के अंदर, यानी वो दर्द आपने महसूस की, लेकिन हकीकत में सिर्फ हाथ जल रहा है, लेकिन जो ईंधन है उसका वजूद जल रहा है, यानी उसकी कहीं पे भी उसे वो नहीं, आराम नहीं है, यानी अगर एक हाथ जला है तो दूसरा हाथ तो नहीं जला ना, चेहरा तो नहीं जला, बाजू तो नहीं जली, सिर्फ वो हाथ का हिस्सा जला जो आग के अंदर गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि ईंधन हो इंसान, उसका हर एक वजूद का जर्रा जर्रा जल रहा है, आग उसके अंदर से निकल रही है, कोई सुकून नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है वजूद का ऐसा कि जहां पे कह सकें कि दर्द नहीं हो रही, तो हकीकत में इंसान वो आग जहन्नुम की जिससे डर रहा है वो खुद उसका ईंधन है। जिन और इंस उसके ईंधन है, पत्थर उसका ईंधन है। अगर दर हकीकत में हमें उस जहन्नुम की आग से डर लगने लग जाए तो इमाम कहते हैं कि वो शख्स किसी भी हराम चीज को नहीं करे। तो दर हकीकत में अगर कोई शख्स हराम को कर रहा है वो इस वजह से, अगर कहें भी हम कि हम जहन्नुम की आग से डरते हैं तो फिर उसकी दलील ये होनी चाहिए कि हम कोई काम हराम ना करें। अगर काम हराम कर रहे हैं तो इसकी एक और दलील है कि हम अभी जहन्नुम की आग से वाकिफ नहीं है या डरते नहीं है। इसी तरह से अगर कोई कहता है ना कि मुझे जन्नत का शौक है, तो अगर जन्नत का शौक है तो फिर इन छोटी छोटी शहवात के पीछे क्यों फिर रहे हो? अगर हकीकत में जन्नत का शौक है, अब इन दोनों चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? इस्तकामत चाहिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है कि इंसान मुहर्रमात से इज्तनाब करे, यानी ये काम आसान नहीं है, ये बगैर इस्तकामत के आपको नहीं मिल सकता। सलावात पढ़े होंगे, उसके बाद इमाम कहते हैं वमन ज़ाहदा फिद्दुनिया इस्तहाना बिल मुसीबात, कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर ज़ोहद करता है उसके लिए मुसीबतें आसान हो जाती। ज़ोहद अब क्या चीज है? ज़ोहद यानी ज़ाहिद, ज़ाहिद आपने बंदा देखा हुआ है? ज़ाहिद वो नाम के अलावा, ज़ाहिद यानी आप हमारी जेहन में जो शक्ल आएगी वो ये कि मसलन कोई शख्स जो के कपड़े वगैरह उसने इतने नहीं, कोई चीज़ ओन नहीं करता मसलन, बहुत ज़्यादा यानी एक एक जो इमेज ज़ाहिद का आएगा वो यही है कि सादा सा, कोई कपड़े इतने अच्छे नहीं, फटे हुए पेवन लगे हुए और सब इस तरह से। ये हम इस तरह से ज़ोहद को तसव्वुर करते हैं, यानी तारिक दुनिया, यानी वो चीज़ें जो कि एक दुनियादार करता है वो ज़ाहिद नहीं करता। लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़ाहिद हैं जो उन्होंने कि ज़ोहद का अभी तक मज़ा भी नहीं चखा, उन्होंने लिबादा तो पहन लिया लेकिन अभी तक ज़ोहद का मज़ा भी नहीं चखा। इस वजह से कि ज़ोहद दर हकीकत में वो हालत नफ्स को कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए तो आप खुश ना हो, और अगर कोई चीज़ आपसे ले ली जाए तो आप नाराहत ना हो। ज़ाहिद कौन होता है? उसके अंदर उसका नफ्स इस तरह से होता है कि अगर कोई चीज़ उसको मिल जाए कोई खुशी नहीं, अगर कोई चीज़ छिन जाए तो कोई गम नहीं। यानी आपने तालाब देखा हुआ है ना, तालाब देखा है, ये सुनामी आजकल ज़्यादा हॉट हुई है तो समुंदर है ना, उसके अंदर एक इवेंट हुआ, उसके नीचे एक इवेंट हुआ, ज़मीन जो थी वो थोड़ी सी ऊपर आ गई ना, क्रश जो था वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। क्रश जैसे थोड़ा सा ऊपर आया, ये समुंदर के अगर मसलन साकिन मितदैनी, कोई उसके अंदर वेव्स नहीं थी और सारा कुछ आराम और सुकून के साथ था, उसके अंदर सुनामी वेव्स पैदा हुई और वो वेव्स पैदा हुई, भरती गई, बड़ी होती गई होती गई होती गई, उसके बाद उन्होंने कितनी चीज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया ना। इवेंट कहाँ से शुरू हुआ? ओशन के कोर के अंदर एक हरकत हुई और उस हरकत ने इस चीज़ को पैदा किया, सही। अब ज़ाहिद क्या होता है कि अंदर हरकत हो, क्रस्ट मूव हो लेकिन सुनामी, हाँ। सलावात पढ़े मोहम्मद, ये ज़ाहिद होता है। और ये ज़ोहद जो है बहुत मुश्किल है, यानी जो दुनिया के अंदर हम जिनको मुसीबतें समझते हैं वो हमारे लिए मुश्किल क्यों होती हैं? हमारे अंदर सुनामियाँ क्यों पैदा होती हैं? हमारे अंदर इस्तराब क्यों पैदा होता है? हम उनकी वजह से नींद हमारी क्यों उड़ जाती है? डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्यों इतनी तबाही और बर्बादी हमारे अंदर ज़ाहिर होती है? क्योंकि ज़ाहिद नहीं है। अगर ज़ोहद हो तो इमाम कह रहे हैं कि वमन ज़ाहदा फिद्दुनिया इस्तहाना बिल मुसीबात, फिर उसके लिए कोई मुश्किल भी जो मुश्किल नहीं रहती, तमाम की तमाम मुसीबत, तमाम की तमाम मुसीबतें उसके लिए आसान हो जाती हैं। वमन इर्तकबल मौत सारा इलल खैरात, और यहाँ पे वो तरक्कुब का जो आपको बता रहे थे कि जो शख्स भी मौत का इंतज़ार करता है या उसको नज़दीक समझता है तो सारा इलल खैरात, वो तेज़ी से अच्छाइयों की तरफ भागता है। कोई चीज़ आपके पीछे लगी हो, सही, अब आपको मिसाल ये है, वैसे तो مثلا یہ کہ کوئی چیز آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کا ترک یعنی آپ کے وہ پیچھے ہے نا, آپ کا کیا وہ کہتے ہیں تعاقب میں ہے آپ کے, سم ون از چیسنگ یو, ول یو جسٹ اسٹینڈ دیئر اور ول یو رن فاسٹ, ول یو جسٹ ریلیکس اینڈ لیٹ دس تھنگ کم ٹو یو اور ول یو رن؟ آپ بھاگیں گے نا. اگر کوئی شخص مثلا یہاں پہ تو ہوتا ہے مثلا یہاں پہ کتے ہوتے ہیں وہ ڈاگ جو ہیں وہ نجس ہوتے ہیں نا, ہمارے لیے ریلیٹیو ٹو اس وہ عین النجاست ہیں. اب وہ کسی کے بچے ہوتے ہیں یعنی ان کے لیے تو بچوں کی جگہ ہے نا ان کی, اب وہ جن کے کہ ان کے بچوں کی جگہ ہے وہ تو ان کو اپنا بچہ ہی سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ عین النجاست ہیں. اب وہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں, ہم کھڑے نہیں رہتے, اس وجہ سے کہ کھڑے رہیں گے تو نجس ہو جائے, ہم بھاگتے ہیں, ہم تیزی سے دور ہوتے ہیں کہ ہم نجس نہ ہوں, صحیح, اور کوشش کرتے ہیں کہ ادھر پہنچ جائیں جہاں پہ یہ نجاست ہمیں ٹچ نہ کرے. انسان اگر اپنی موت کو نزدیک سمجھتا ہے تو وہ خیرات کے پیچھے بھاگے گا, وہ اسی جگہ پہ کھڑا نہیں رہے گا. یہ جو خوف ہوگا یا یہ وہ جو چیز جو کہ اس کے اندر پیدا ہوگی کہ اس موت اس کے نزدیک آ رہی ہے, موت اس کے تعاقب میں ہے, وہ بھاگ بھاگ کے خیرات کرے گا, بھاگ بھاگ کے اچھے کام کرے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیے تو وہ جو کہ میرا تعاقب, وہ جو کہ میرے پیچھے ہے, جو کہ مجھے چیز کری, وہ مجھے پکڑ لے گی, پکڑ لے گی تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. اچھا, موت کے حوالے سے بس تھوڑی سی بات کر کے تو آج کی بات کو جو یہاں پہ اختتام کریں گے, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یقین کے حوالے سے بات کریں گے. موت کے حوالے سے ہم بات ویسے آپ کے ساتھ کافی دفعہ کر چکے ہیں, لیکن چلیں, انسان کتنی دفعہ مرتا ہے؟ ایک بار, روز مرتا ہے. آسان, اگر روز مرتا ہے تو اس کا جنم کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم مرتے ہر روز ہیں تو آغا صاحب نے مرتے ہم روز اس لیے کہا کہ جو نیند ہے, مثلا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ 10 بجے مر جاتے ہیں, 11 بجے مر جاتے ہیں, 12 بجے مر جاتے ہیں, کئی 1 بجے مر جاتے ہیں. جو نیند ہے وہ چھوٹی موت ہے, اور خدا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے, اس وقت خدا کے پاس ہوتا ہے, وہ اپنے خالق کے پاس ہوتا ہے, اگر وہ چاہے تو اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر نہ چاہے تو اس کو وہیں پہ رکھتا ہے. صحیح, اب جب وہ ہر روز جو ہے رات کو مر جاتا ہے تو پھر واپس اس دنیا میں اگر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہونا. ہاں, 365 ڈیز, یعنی پیدا ہونا نا, یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور پھر آنکھیں کھولتا ہے. صحیح, پہلے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں, جب آتا ہے اس دنیا میں تو آنکھیں کھولتا ہے. تو حقیقت میں انسان ہر روز مرتا ہے اور ہر روز پیدا ہوتا ہے, اور وہ جو دن ہوتا ہے وہ آپ کی ایک زندگی ہوتی ہے. ہر روز آپ کو خدا ایک زندگی دیتا ہے, اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ صبح جو آپ پیدا ہوئے, مثلا کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں 11 بجے, کئی پیدا ہوتے ہیں 1 بجے نا, 1 بجے پیدا ہو کے رات کے 9 بجے مر جاتے ہیں, یعنی ٹوٹل انہوں نے جو زندگی چاہی تھی خدا سے وہ وہی 10-11 گھنٹے بھی نہیں بنتے نا, وہ 8 گھنٹے میں بس, انہوں نے کہا بس کافی ہو گیا نا. کئی لوگ ہیں مثلا وہ صبح 4 بجے پیدا ہوتے ہیں, 5 بجے پیدا ہوتے ہیں, ایسا آپ نے دیکھا ہوگا, امی سے پوچھیں کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے, وہ بتائیں گے. کئی لوگ 5 بجے صبح کے, 4 بجے صبح کے, 2 بجے صبح کے پیدا ہوتے ہیں. صحیح, اب وہ جو کہ 2 بجے یا 4 بجے پیدا ہوگا اور مثلا 12-1 بجے مرے گا, اس کی زندگی کیا لمبی ہے, اور اس لمبی زندگی کے اندر اس کے پاس زیادہ موقع ہیں کہ وہ کیا کرے, حسنات کرے, اس شرط پہ کہ اسے یقین ہو, جانتا ہو, اس کی سوچ اس طرح سے ہو کہ جب وہ سوئے گا تو یہ اس کی موت ہے. اب اگر کوئی شخص اس طرح سے زندگی کرتا ہے, یعنی اب میرے پاس اگر میں یہ دیکھوں अगर आप वैसे समझें कि मैंने एक बजे मर जाना है, तो अभी तकरीबन 9 बज गए हैं, तो 9 बज गए हैं तो 1 बजे तक मेरे पास कितना टाइम है मरने से पहले? 4 घंटे। अब ये जो 4 घंटे हैं, अगर मुझे पता हो कि मैंने 1 बजे वाकई मुझे यकीन हो और मैं ये जानता हूँ और मैं इसी के हवाले से सोचूं, हकीकत भी यही है। ये हमारी गलत फहमियाँ जो हम समझते हैं कि एक दफ़ा हम पैदा होते हैं और एक ही दफ़ा हम मरते हैं, ये गलत फहमी है हमारी। ना तो मौत को समझें हम और ना ही हयात को समझें। अगर मैं ये जान जाऊं और इसके ऊपर यकीन ले आऊं कि 1 बजे मुझे मरना है, तो ये 4 घंटे मैं ज़ाया नहीं करूंगा। अगर कोई छोटी से छोटी नेकी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उसको करूंगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं और मुझे ओन करना है जितना भी मैं ओन कर सकता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है। अब ये खुदा क्यों करता है कि हमें वापस भेज देता है? वो आपको एक और चांस दे रहा है, सिर्फ मकसद उसका ये है, ताकि रोजे माशे में कोई ये ना कहे कि आपने तो हमें एक ही दफा पैदा किया और एक ही दफा मारा, अगर कई जिंदगियां दे देते तो हो सकता है हम सुधर जाते। और अगर कोई मसलन कोई शख्स है, मसलन आप अपना कैलकुलेट करें कि कितनी जिंदगियां आप कर चुके हैं, कि अगर कोई 37 का है, 38 का है, 40 का है, सही 365 डेज हैं ईयर में, 40 को 50 को 365 से ज़रब दे दें और वो जो नंबर आएगा उतने आपने क्या जिंदगियां की हैं और उतनी ही मौत। तो जो शख्स इतनी दफ़ा मरा हुआ हो और जिसने इतनी दफ़ा जिंदगी की हो वो फिर भी डरे, वो फिर भी डरे। लेकिन ये जो डरना इमाम यहाँ पे कह रहे हैं वो यही है कि अगर मौत को आप वाकई नज़दीक समझते हैं तो फिर आप किसी अच्छे काम को नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप भागेंगे अच्छे कामों की तरफ, सही। और इंसान ये तब सोच सकता है जब वो अपनी इस हकीकत को मान जाए और कुरान की आयात की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, असल में हकीकत यही है कि जब आप सोएंगे तो ये आपकी मौत है। फ़र्क क्या होगा जब हम कब्र में डाल, जब हमारा जिस्म कब्र में डाल दिया जाएगा, फ़र्क क्या है उसमें? कि आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी, फ़र्क सिर्फ इतना। और वो सब आमाल जो हमने ओन किए, जो हम साथ ले गए, उससे फिर या तो हमें फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह ताला खुदा करेगा कि खुदा हमें इतनी इस्तकामत दे कि हम वाकई इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए और खुदा हमारी इताअत के अंदर, सब्र के अंदर, यकीन के अंदर वो इजाफा करेगा। दुश्मनान इस्लाम जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और अपनी तमाम तर कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की, खुदा उनको निश्चित नाबूद करें। खुदा हमारे मराज़े की ज़िंदगी में इजाफ़ा करे और उनके हिदायत के नूर हम तक पहुँचाता रहे। ये बेदारी जो कि हम आज देख रहे हैं मुसलमानों के अंदर, खुदा उनकी इस बेदारी के अंदर उनको इस्तकामत दे, सब्र दे, और ये बेदारी जो है वो एक वसीला बने इमाम ज़माने सलाम के ज़हूर का। खुदा इनकलाब इस्लामी की हिफाजत करें और उसका इत्तेसाल इमाम के इनकलाब के साथ करें। इमाम खामनाई की को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, उनकी राहबरियत के नीचे तमाम मुसलमानों को जमा कर दें। खुदा हमें इमाम के ग़ुलामों में से, उनके इंसानों में से शुमार करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल असर, इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्ला लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र।